ओम शांति। बाबा के लिए हम गाते रहें, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो सर्व संबंध एक बाप से जुटाने हैं, और इसमें भी जिस संबंध से हमें लगाव है उस संबंध से बाप को याद करना है, या जो संबंध हमारे मिस होते हैं, क्योंकि कई बार कईयों का भाई नहीं है, कईयों को माँ का सुख नहीं मिला है। बहन पीछे से आकर ऐसे नहीं बैठ जाओ, जाओ पीछे, जहां आते हैं वहां बैठ जाते हैं देरी से आकर, पीछे जाओ। देरी से आते हैं पीछे ही बैठो, आगे आने की कोशिश नहीं करो। तो गाते रहे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो अभी देखना है कि हमारा किसी लौकिक या अलौकिक से मोह है। यदि उनसे मोह है तो वो विशेष संबंध हमको प्रयोग करना है, क्योंकि बाबा के साथ सब संबंध है उसका हमें प्रयोग करना है। भल गाते तो सहज है, तो मेरे माता पिता बंधु सखा विद्या द्रविणम सर्वम त्वमेव मम देव देव गाते हैं, परंतु उसका अनुभव किया है? ये देखना है कि सर्व संबंध का अनुभव हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। भाइयों को भी बाबा से साजन का अनुभव करना है। कितने भाइयों ने साजन का अनुभव किया है, जरा हाथ उठाना। बस 15-20। अभी सजनी बन साजन का अनुभव करना। देखो बाबा ने लौकिक को कैसे अलौकिक बनाया। ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल जसोदा, जिसने उसको सदैव भगवान पति देव माना, उसको भी बाबा ने सिखाया बाबा कहना। मम्मा की मां ने बेटी को मां कहना सिखा, तो इसी रीत से हमें भी देखना है कि हम बाबा से यानी बाप दादा से, क्योंकि कई पूछते हैं शिव बाबा से कैसे हम ये सब संबंध बांधे। नेचुरली है, निराकार से माँ बाप सब संबंध नहीं समझ सकते हैं, परंतु बाप दादा को हमेशा साथ में रखना है। पहला संबंध माता, तो बाबा जैसे लौकिक माँ क्या करती है, बच्चों की पालना सफाई। छोटा बच्चा है, गंदगी करता है, टट्टी करता है, पेशाब करता है, कहां भी कोई भी गंदगी करता है तो मां क्या करती है, प्यार से उसको साफ करती है। मारती पीटती नहीं है, प्यार से साफ करती है। ऐसे बाबा हमारी आत्मा को साफ बनाते हैं, निर्विकारी बनाते हैं। विकारों का हमारी आत्मा पर दाग लगा है, बाबा सफाई करते हैं। पिता के रूप में बाबा वर्षा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक माता थी, उसको खुद को 5 बच्चे थे, पर हमारे पास आकर कंप्लेन करती थी कि हमारी माँ ने हमें कुछ सुख नहीं दिया। हम छोटे थे तो हम बच्चों को ऐसे रखकर खुद शॉप पर चली जाती थी, तो मुझे ही सब छोटे भाई बहनों की संभाल करनी पड़ती थी, माँ का सुख नहीं मिला। मैंने कहा माता तुम ज्ञान में हो, बाबा को मां बनाओ ना। तो उसने क्या प्रयोग किया, जब खाना खाती थी ना तो समझती थी बाबा मुझे मां बन के खिला रहा। तो ये प्रयोग करने के बाद 8 दिन में मेरे पास आई कि दीदी अभी हमको मां का प्यार बाबा से मिला है। अभी मैं मेरी लौकिक मां को कह सकती हूं कि मां मैं तुमको प्यार करती हूं, नहीं तो मैं कभी नहीं बोल सकती तो मां तुमको मैं प्यार करती हूं। फिर बाबा को बाप बनाकर, क्योंकि बाबा पिता के रूप में हमें वर्षा देता है, तो पिता का रूप समझना तो सहज ही है। क्या करना है, खुद को बच्चा बन जाना, बाप की अंगुली बन के पकड़ के जहां तहां जाना है। जैसे बच्चे माँ बाप के साथ शॉप में जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो जहाँ भी जाओ समझो बाप मेरी अंगुली पकड़ के ले जाता है। जब मुरली सुनते हो टीचर का स्वरूप याद करो कि बाबा टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं। जो सामने बैठी है टीचर उसको नहीं देखो, खास मुरली टाइम तो बाबा मुरली सुनाता है ना हमको, कितना दूर से बाबा रोज आकर मुरली सुनाते हैं। कहता है ना कि दूर देश का मुसाफिर आया है, तो मुरली सुनते समय टीचर समझकर सुनो। और टीचर इतना दूर से पढ़ाने आते हैं तो हम बच्चों को स्टूडेंट समझ के अपने को गॉडली स्टूडेंट समझना है, अपने को गृहस्थी नहीं समझना है। गॉडली स्टूडेंट बनकर क्लास में बैठो और मुरली सुनो। फिर बाबा हमारा गुरु भी है, गुरु बनकर हमें श्रीमत देते हैं, गाइडेंस देते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, बाबा के सामने बैठो और उसका हल लो। या मुरली में तो बाबा रोज डायरेक्शन देते ही रहते हैं, बाबा की श्रीमत तो हमारे साथ है ही, तो श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना है। उसमें बहानेबाजी या आलस्य न हो, क्योंकि कई बार क्या है कि कई आलसी होते हैं, कहते हैं सारा दिन तो बाबा को याद करना है, अभी अमृत वेले तो थकी हुई हूं, चलो अभी तो थोड़ा आराम कर लूं। हमारे पास मॉरिशियस में एक भाई था, उसने अपने डायरी के ऊपर लिखा कि मैं रजाई के लिए रजाई छोड़ दूंगा। नहीं तो क्या होता है, ठंडी में रजाई या ब्लैंकेट छोड़ने की मर्जी नहीं होती है ना, समझते हैं, थोड़ा ठंडी में लेते लेते बाबा को याद करे। तो उसको ये निर्णय था कि मुझे रजाई लेनी है, रजाई को छोड़नी है। तो इसलिए श्रीमत का पालन जरूर करना है। विशेष क्या होता है, इंडिया में जब ही मित्र संबंधी के पास जाते हैं तो आग्रह करेंगे भाई कुछ न कुछ खाओ पियो, तो वहां थोड़ा तकलीफ हो जाती है कि माँ को कैसे ना बोले, सासु को कैसे ना बोले, देरानी जेठानी को कैसे ना बोले। लेकिन जो पक्के होते हैं ना, वो इसका भी ध्यान रखते हैं। हमारे पास दो भाई थे, माँ ज्ञान में नहीं थी, तो माँ क्या करती थी, लगाव तो होता था है ना माँ का, तो उनके लिए सूप बनाती थी या ब्रेड बनाती थी। मैंने ये आपके लिए नए ब्रेड के टिन लाए हैं, आप खाओ। परंतु बच्चे इतने पक्के थे, छोटे नहीं थे, 20-25 साल के थे, परंतु वो कहते थे माँ तुम्हारा लगाव है ना, इसलिए तुम्हारी बनी हुई चीज नहीं खाएंगे। तो समझो छोटी छोटी बातें हैं ना, उसका भी हमें पालन करना है, क्योंकि बाबा ने जो नियम बनाए हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए बनाए हैं। इसलिए बाबा के फरमानों को अपने जीवन में उतारना है। फिर बाबा का संबंध साजन का, वो साजन हम सजनी, बाबा बाबा को भक्ति में भी कहते हैं हे नाथ, तो हमें ये रखना है कि हमारी दृष्टि वृत्ति औरों के तरफ अलौकिक रहे। पति को बाबा कहते हैं भाई समझना है, भले भाई ना कहो ना पब्लिक में, परंतु अपनी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए ये भाई है, पत्नी को बहन समझना है, या आज सवेरे क्या कहा शिव शक्ति भाई है महावीर, तो उनको शक्ति जगदम्बा उस रूप में देखना है और बाबा को साजन के रूप में। तो उठो बैठो खाओ पियो साजन के साथ, साजन को प्यार से खिलाकर फिर खाओ या साथ में बैठकर खाओ, साथ में सो, साकार दुनिया से आकारी दुनिया में जाकर साजन के साथ सो जाओ और सवेरे आकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आ जाओ। फिर परमात्मा को कहते हैं सखा, तो ये देखना है कि परमात्मा के साथ हमारा मित्र का भी संबंध हो। जैसे मित्र क्या करते हैं, जहां जाते हैं साथ जाते हैं, सुख दुख की बात एक दो को सुनाते हैं, नफा घाटा जो भी होता है एक दो को सुनाते हैं। इसी रीत से हमें भी क्या करना है, भगवान को मित्र बनकर अपनी दिल की बातें सुनाना है। देखो दुनियावी मित्र तो क्या करेगा, इधर की बात उधर भी फैला सकता है, परंतु बाबा हमारी बात और किसी को नहीं कहेगा ना। और भी हमें मॉरल सपोर्ट देगा, न हंसी उड़ाएगा न क्रिटिसाइज करेगा। दुनियावी मित्र तो कह भी सकता है तुम सब बुद्धू हो, इतना भी नहीं समझते हो, इतना भी ठीक नहीं करते हो, कभी कभी बोल सकता है, बाबा नहीं करेंगे ऐसे। बाबा मीठे बच्चे मीठे भाई करके हमारी साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से राय सलाह देंगे। इसलिए दूसरे किसी को मित्र नहीं बनाना है, नहीं तो क्या होता है आपस में फैमिलियारिटी हो जाती है। तो ये देखना है किसी से भी फैमिलियारिटी ना हो, एक बाबा हमारा मित्र, एक रावण हमारा दुश्मन, और किसी से दुश्मनी नहीं न मैत्री नहीं। और जिसको भाई नहीं है उसको बाबा को भाई बनाना है। राखी के दिन विशेष भाई को याद करते हैं, तो बाबा को विशेष राखी बांधो, भैया दूज के दिन बाबा को याद करके तिलक लगाओ, भोजन खिलाओ। तो जैसे भाई समझकर उसके साथ चित बातचीत संबंध बांधो। और फाइनल है बच्चा। बाबा को किसने बच्चा बनाया, जरा हाथ उठाना। 30-40%। तो बाबा को बच्चा भी बनाना है। हमारे पास एक युगल था बंबई में, उसको बच्चा नहीं था। एक भी बेचारों ने बहुत कोशिश की इधर उधर, क्योंकि आजकल तो कई कोशिश करते हैं ना बच्चे के लिए। IVF भी करते हैं आदि आदि। तो उन्होंने काफी कोशिश की, बच्चा नहीं हुआ। तो उनको थोड़ा दुख था। मैंने कहा बच्चा, बाबा को बच्चा बना लो। तो उन्होंने क्या किया, जब भी बाजार जाते थे, जो भी खरीदारी करते थे, बाबा के लिए सेंटर के लिए भी कुछ न कुछ लाते थे। अपने लिए कपड़ा खरीदते थे, बाबा के लिए भोग का कपड़ा ले आते थे। सब्जी खरीदते थे तो उस सेंटर के लिए भी कुछ ले आते थे। तो धीरे धीरे उनको ये नहीं, कमी महसूस नहीं होती थी कि हमें कोई बच्चा नहीं है। तो योग में ये सब प्रयोग करने हैं। बाबा के साथ सर्व संबंध बांध के, बाबा ही मेरा सब कुछ है। और दूसरों से नष्ट मोहा जा, क्योंकि लौकिक में हम लोगों को क्या आदत थी, आधार लेने की, व्यक्तियों का आधार लेने की। बच्चों का माँ बाप में मोह और माँ बाप का बच्चों में मोह। माँ बाप समझते हैं कि मैं हमारे सिवायनों की कौन संभाल करेगा, और बच्चे भी समझते थे जब भी राय सलाह लेनी होती थी माँ बाप के पास दौड़ते थे। तो इसी रीत से सेवा में भी कईयों को आदत होती है एक ही व्यक्ति का सहारा लेने की। ये ना हो, सहयोग लो परंतु उनके ऊपर डिपेंड ना हो जाओ। क्योंकि एक बल, एक भरोसा होगा तो विजय होंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं इतनी मोहब्बत हो जो मेहनत नहीं करनी पड़े और भारी ना लगे, बोझा ना हो। तो जब भी ऐसे लगता है बोझ, माना कुछ गड़बड़, या तो हम जिम्मेवारी लेते हैं, मेरा काम है, तो बोझ उठा लेते हैं। और दूसरा कारण बोझ का, पाप कर्मों का खाता। तो इसलिए जितना बाप को याद करेंगे पाप भी मिट जाएंगे और निमित्त समझकर चलेंगे। तो बाबा करावनहार है, मैं करणहार हूं, तो हम हल्के रहेंगे और जितना हल्के रहेंगे उड़ते रहेंगे। तो इसलिए चाहे गृहस्थी भी है, अपने को ट्रस्टी समझ कर चलो और बाबा को जिम्मेवार दे दो और बाबा सब कुछ कराएगा। मेरे पास तो ऐसे भी एग्जाम्पल है कि एक बहन थी, टीचर बहन, ज्ञान में काफी साल से थी और इन 1950s अर्ली 60s में कोई एडल्ट एजुकेशन क्लास नहीं होती थी। अभी तो डिक्शनरी भी है और कई एजुकेशन के लिए साधन है। वो बहन ट्रांस में जाती थी, ओम शांति। वो बहन ट्रांस में जाती थी ना, तो वो हट लेकर बैठी, बाबा को कहती, बाबा आपको मुझे हिंदी सिखाना है। और बाबा उसको ट्रांस में अल्फाबेट सिखाया, मुरली पढ़ना सिखाया और मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब जिनको शौक होता है वो भाषा ना जानते हुए भी सीख जाते हैं, मुरली पढ़ लेते हैं। बाबा को उसने सचमुच अपना टीचर बनाया और मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। तो जिसकी लगन है उसको बाबा भी मदद करते हैं। तो इसलिए जितना जितना हम बाबा का सहारा लेते जाएंगे, हम दुनियावी लोगों से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओम शांति। जो देरी से आते हैं ध्यान में रखो, बीच में एक सीट खाली रखना, जहां ताने बैठ जाओ।
ओम शांति। आप में से किसी को भी प्रश्न पूछना हो यहाँ आगे आकर के माइक लेकर के पूछ सकते हैं, या फिर अगर लिख करके देना चाहे वो लिख करके भी दे सकते हैं। वैसे पहले अनाउंस किया था कोई प्रश्न हो तो पहले से तैयारी रखे। किसने तैयार रखा है अपना प्रश्न? कोई प्रश्न है
जिनको पूछना है आगे आ जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ
या माइक ले लीजिए।
ओम शांति। दीदी मैं ये जानना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने बाबा की मुरली सुनी जिसमें बाबा ने बोला,
यह निकाल लो।
कुछ दिन पहले मैंने बाबा की एक मुरली सुनी जिसमें बाबा ने बोला कि निर्बंधन हूँ, इस वरदान की स्मृति से देहधारियों को माया के बंधनों से मुक्त करो। ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं इस सुमन का अभ्यास करती हूँ कि मैं निर्बंधन हूँ, तो क्या इससे क्या मन का भी बंधन कट जाता है? अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव झुकाव है, राग द्वेष है तो?
बाबा ने एक मुरली में कहा था निर्बंधन, जो ये स्वमान अगर लेंगे तो हम ना केवल अपने को निर्बंधन करते हैं लेकिन दूसरों को भी हम निर्बंधन कर सकते हैं, ऐसे कहा था बाबा ने। तो क्या हम इस वमान को अभ्यास करने से हम सभी
मतलब मन के बंधनों से भी छूट सकते हैं? अगर किसी के पास ये राग है द्वेष है तो
राग द्वेष से भी छूट सकते हैं?
मन का बंधन सबसे कड़ा है क्योंकि देह का संबंध और बंधन तो तोड़ सकते हैं पर मन का बंधन संस्कारों का बंधन तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना पड़े? मन मना भव, मन को भी बाबा को समर्पण करना, तन को समर्पण करना सहज है, मन को समर्पण करना यानी ये मेरा मन ये कहता है मन मत छूटनी चाहिए। अभी मुझे इस रीत से सोचना है बाबा क्या सोचता है, बाबा का क्या कहना है। तो जितना जितना बाबा 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 करते रहेंगे ना तो मन का बंधन टूट जाएंगे।
ये तो दीदी ठीक है कि मन मना भव से मन के बंधन कटेंगे, लेकिन क्या इस स्वमान के अभ्यास से इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है मन के बंधनों के ऊपर?
ये वही बात दीदी कह रहे हैं ना, मन वो
मतलब स्वमान को प्रैक्टिस करते हैं तो
हाँ स्वमान को प्रैक्टिस करते हैं तो होगा ही
भी करनी है और प्रैक्टिकल में बाबा से कनेक्शन रखना।
ठीक है,
ओके। कहना नहीं है, फील करना है। क्योंकि क्या होता है, मन में बोलते रहेंगे हाँ मैं निर्बंधन हूँ, परंतु फील भी करना है। थोड़ा दूर बैठो उस बैन से। अच्छा, और किसी का है कुछ?
दीदी ये बाबा हमेशा ये कहते हैं, कभी कभी कहते हैं ना, धर्मराज के रूप में भी याद करो बाबा को। वो भी संबंध मना बाप टीचर और सदगुरु, ये तीन संबंध तो इजी है या फिर लगातार हम अभ्यास करते हैं, लेकिन दादी जानकी कभी क्लास में कहते थे कि धर्मराज के रूप में भी बाबा को याद करो, तो उससे क्या होगा?
क्या है कि जब हम कर्म करते हैं तो पाप कर्म ना हो, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो पाप की सजा बाबा धर्मराज के रूप में देंगे। तो इसलिए बाबा को धर्मराज के रूप में सामने रखो, क्योंकि तो थोड़ा डर के हम पाप कर्म से बच जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होता रहेगा। तो इसलिए देखना है कि हमारे से कोई पाप कर्म न, जो कर्म करते हैं बाबा कहते हैं बोलना सोचना उसके करना, उसके पहले सोचो कि ये यथार्थ है या नहीं, ये बाबा की शिक्षा अनुसार श्रीमत अनुसार है या नहीं। तो यदि विकर्म नहीं होंगे तो नेचुरली है सजा खानी नहीं पड़ेगी, विकर्म हो गए सजा खानी पड़ेगी तो धर्मराज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं धर्मराज को भी सामने रखो कर्म करने के पहले।
जिनका भी प्रश्न है थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, डरना नहीं या फिर संकोच नहीं करे, दिल खोल करके पूछ सकते। कोई भी अगर प्रश्न है तो तो आगे आकर के आप पूछ सकते हैं।
बीच में एक जगह खाली रखी,
खाली है दीदी,
हा?
खाली है, ऑन है।
ओम शांति बहन, मुझे याद की परिभाषा में थोड़ा स्पष्टता चाहिए था। जैसे एक होता है चलते फिरते कर्म करते हुए याद, एक होता है जब हम मुरली के पहले या मुरली के बाद जो बैठते हैं योग करते हैं, या कम चांस मिलता है कि ऐसा संगठन मिले और सब याद करते हैं तो वो योग में, और तीसरा जो याद है जैसे बाबा कहता है कि मुरली याद किया तो बाबा भी याद आए, तो ये तीनों प्रकार के जो याद है ना, मुरली सुनते वक्त भी हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन तीनों प्रकार की याद में आप क्या मतलब अनुभव करना चाहिए, या मुझे कैसे लगेगा कि मैंने याद किया है बाबा को?
कौन से तीन प्रकार?
जैसे एक होता है कर्म करते हुए याद,
कर्म करते हुए,
हाँ, एक तो मुंह से बाबा निकलना अलग होता है और एक अंदर का जो रूपरेखा होता है वो अलग होता है। दूसरी बात, जब हम बैठ के जब बाबा को याद करते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने याद किया है, करंट लिया है, कि मैं 10 मिनट बैठा रहा? और तीसरा, जब मुरली सुनता हूं तो बाबा की याद में मैंने मुरली सुना, वो मुझे कैसे अनुभव होगा? ये तीनों बार परिभाषा स्पष्ट कर।
देखो, कर्म करते करते याद करते हो तो क्या होगा कि आप का कर्म है वो एप्रोप्रिएट होगा, ठीक होगा, बरोबर होगा, उसमें गड़बड़ नहीं होगी और सफलता ज्यादा होंगी। मुरली समय याद करते हैं तो ज्ञान और योग दोनों रहता है ना, बुद्धि में ये रहेगा कि बाबा मुझे मुरली सुनाते हैं, और तीसरा जब विशेष याद में बैठते हैं तब एम रखूं, जितने पुराने होते हैं ना उनको बिंदी बनकर बिंदी की याद में बैठना है, और जितना आप याद करते जाएंगे ना संस्कार परिवर्तन होता जाएगा, लाइट फील होते जाएंगे, हर्षित रहेंगे, खुशी रहेंगी, नशा रहेगा, तो आप में परिवर्तन देख आप समझ सकते हैं कि आप कितना याद में रहते हैं। मतलब नेचुरली है कि जब कर्म करते हैं तो इतना पावरफुल याद नहीं रहेंगे, परंतु कोशिश करनी है कि बाबा की याद में शुरू करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, भोजन करते करते शुरू में तो हम याद में बैठते हैं, फिर बीच में भूल जाते हैं। खुद बाबा अपना अनुभव करता है, बीच में मैं भूल जाता हूँ तो घड़ी घड़ी फिर याद कराना पड़ता है कर्म करते करते अपने आप को, मैं बाबा की याद में हूँ, बाबा याद है। तो समझो कर्मयोग के टाइम इतनी पावरफुल याद नहीं रहेंगे, मुरली के समय भी घड़ी घड़ी बीच में अपने आप को याद कराना पड़ता है कि बाबा पढ़ा रहे हैं। स्पेशली क्योंकि कईयों को क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, टीचर बोलती है ठीक नहीं है, ये इनका मनन मंथन ठीक नहीं है, हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आदि आदि, तो ये समझो देभान में आ जाते हैं। तो ये देखना है, टीचर को नहीं देखना है, पर उस समय ये समझना है बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं। ठीक है,
ओम शांति। आज जो हम बाबा के साथ सर्व संबंधों की बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगा कि जब कर्मयोगी जब हमें बनना होता है तब हमें सर्व संबंधों का प्रयोग करना होता है, लेकिन अगर मुझे बीज रूप अवस्था में वो अवस्था अगर बनानी है तो मुझे इन सारे संबंधों से परे जाना होगा, राइट? उससे उसके लिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। बीज रूप अवस्था का अभ्यास करना है तो सारे ये संबंधों से भी मुझे परे जाना होगा।
सवाल है कि कर्मयोगी बनते सर्व संबंध कैसे हो सकता है?
इनका प्रश्न था दीदी, जब बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हैं सर्व संबंधों से परे होना है,
तभी तो सर्व संबंध से परे जाना होगा ना। बीज रूप में सिर्फ जैसे चलते फिरते हम संबंध में आ सकते हैं, कर्म करते करते संबंध में आ सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट विशेष करते हैं ना, क्योंकि जिन्होंने अनुभव नहीं किया उसको विशेष अनुभव करने के लिए प्रयोग करना पड़े। बाकी बीज रूप अवस्था में तो अपने देह से भी परे जाना है, संबंध से भी परे जाना।
लेकिन बीज रूप स्थिति तो लंबे काल, आधा घंटा एक घंटा जब योग में बैठते हैं तो बीज रूप स्थिति आधा घंटा या एक घंटा पूरा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा ना दीदी, तो फिर बीच बीच में संबंधों का भी अनुभव करें।
डिपेंड्स, क्योंकि किसी को क्या है किसी को क्या है, किसी को ऐसे लगता है चलो हम सूक्ष्म वतन में सैर करें तो ब्रह्मापुरी में जाएंगे, विष्णुपुरी में जाएंगे, शंकरपुरी में जाएंगे आदि आदि सैर भी कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स, या बाबा से चिटचैट भी कर सकते हैं। संबंध तो मैं समझती हूँ विशेष चलते फिरते करना पड़े।
ओम शांति दीदी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बाबा आपकी मुरलियों में बहुत तारीफ करते हैं तो आपको आप ही समझ सकते हो और बाबा ही समझ रहे हैं, तो बस मैं मुझे ये जानना है कि गुण तो आप में बहुत सारे हैं पर वो कौन सा गुण है जो बाबा ने आपको बहुत पसंद किया उस गुण की वजह से, तो वो गुण मुझे अपने अंदर धारण करना है।
प्रश्न था दीदी कि साकार बाबा मुरलियों में आपकी बहुत महिमा करते हैं, तो वो महिमा आप जानते हैं बाबा जानते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, है ना, तो वो कौन सी ऐसी विशेषता है आपकी जो बाबा आपको पसंद करते हैं ताकि मैं भी उसको धारण करूं? बहन कह रही,
बाबा मुझे कहते थे बना बनाया हो, नमा का बना बनाया हो, तो जब मैं ज्ञान में आई उसके पहले पवित्रता, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, आज्ञाकारी, वफादार, प्रमाणबद्धार, और आते ही हमने सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया, अर्थात जैसे मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाबा का है, और स्टडी में भी पंक्चुअलिटी थी हमारी, डिसिप्लिन भी थी हमारे में, तो ये समझो मेजोरिटी गुण हमारे में ज्ञान के पहले ही थे, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा की परखने की शक्ति बहुत है और उन्होंने हमारे चाल चलन व्यवहार देखकर हमें टाइटल देना शुरू कर दिया।
बाबा दादी दीदी को निर्मल आश्रम भी कहते थे, माना इतना निश्चल पवित्र और बहुत डिटैच्ड सबसे, है ना, ये सारे गुण दीदी में है।
ओम शांति दी। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कही है कि ज्ञान
नजदीक रखो जरा।
ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है और अगर ज्ञान धन भरपूर होता है तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती है, तो इसका क्या अर्थ है?
ज्ञान धन भरपूर होता है तो
बाबा बहुत सारे मुरलियों में ये कहा है कि ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है, ज्ञान धन होगा तो स्थूल धन भी आ जाएगा।
स्थूल मैंने तो ऐसे कभी नहीं सुना, स्थूल धन आ जाएगा
वो सोर्स ऑफ इनकम है ना दीदी, सोर्स ऑफ इनकम है ना ज्ञान।
नहीं, ज्ञान है, लौकिक पढ़ाई है वो सोर्स ऑफ इनकम है, बाकी ईश्वरीय ज्ञान से तो हमारी अविनाशी कमाई होती है, यानी स्थूल धन नहीं आता, ईश्वरीय कमाई अविनाशी कमाई है, तो उससे समझो जितना हम धन दान करेंगे हमारी स्टेटस सत्युग में ऊंची होंगी, बाकी यहाँ नहीं हम धनवान बनेंगे,
भविष्य में धनवान बनेंगे।
यहाँ खुशी है, प्यार है, शांति है, इसका सबका अनुभव होगा।
स्थूल धन भी चाहिए ना, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं?
बस लास्ट अभी।
ओम शांति दीदी, मैंने ये जानना चाहती हूँ कि अनेक बार जब मन में कोई सवाल आता है तो हम योग के दौरान कभी कभी बाबा को पूछ लेते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया है कि उसके जवाब कभी भी मुरली में या कोई लिटरेचर से या कोई क्लास द्वारा या निमित्त टीचर बहनों से वो मुझे मिल जाता है, ये अनुभव तो मैंने किया है। लेकिन अनेकों से मैंने सुना है कि बाबा ने डायरेक्ट उनको टचिंग दी है या बाबा ने डायरेक्ट आंसर बोला है,
किसको
ऐसे सुना है और लोगों से, तो मुझे ये जानना था कि योग के दौरान डायरेक्ट टचिंग मिलती है या इंट्यूशन होता है, तो क्या ये अपने मन के खेल है या बाबा से आया है, ये कैसे पता चलेगा?
देखो, यदि बाबा की टचिंग है तो वो प्रैक्टिकल में होगा, और भी हमारे जो साथी हैं ना वो उसमें एकमत हो जाएंगे, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सब मिलकर, जैसे वो मीटिंग वालों को कहा ना सबने एक मत होकर कार्य किया, तो बाबा की टचिंग हुई, एक ने कहा दूसरे ने माना और कार्य सहज हो जाएगा। यदि मेरी मनमत है ना, तो मेरी मनमत और दूसरों की मत में फर्क हो जाएगा, तो उनका सहयोग नहीं मिलेगा और कार्य करने में मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है,
ओम शांति दीदी। हम कह रहे हैं मैं ज्ञान तो चलता हूँ दीदी, पवित्रता मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपने माँ का बनाया हुआ खाना खाता हूँ, क्या उसके धर्मराज का सजा भोगना पड़ेगा हमको?
माँ ज्ञान में नहीं है।
नहीं है ज्ञान, माता पिता ज्ञान नहीं चलते, लेकिन खाना उन्हीं के हाथ का खाता हूँ मैं, कुमार हूँ मैं।
कुमार है, ज्ञान में चलते हैं, लेकिन माता पिता ज्ञान में नहीं है, माँ का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, तो क्या धर्मराजपुरी में धर्मराज का की सजा खाना पड़ेगा?
डिपेंड्स, माँ कितनी उम्र की है, माँ ब्रह्मचर्य का पालन करती है या नहीं, यदि माँ बड़ी उम्र की है और ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो हर्जा नहीं है, सिर्फ माँ को कहो बाबा की याद में भोजन बनावे,
बाबा को पहचानते नहीं है।
और आप खुद बाबा को प्रेम से भोजन स्वीकार कराओ, भोग लगाओ।
लेकिन मैं परिवार में बड़ा हूँ, मेरे छोटे भाई का शादी हो गया है, कभी कभी वो बना देती है, उसकी पत्नी बनाती है खाना, उसको भी मुझे खाना पड़ता है, तो इसका तो भोगना पड़ेगा। क्या सत्य है ये?
इनके परिवार में जॉइंट फैमिली है, उनका छोटा भाई है, छोटे भाई की वो शादीशुदा है, वो छोटे भाई की जो पत्नी है वो कभी कभी भोजन बना लेती है, तो वो भी भोजन खाना पड़ता है।
वो थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा कि अपने हाथ से भोजन बनाओ।
दीदी ओम शांति। 96 में कुमारों के साथ दादी मिल रही थी, बड़ी दादी, तो उनसे यही प्रश्न दादी से पूछा गया था, तो बड़ी दादी ने कहा माँ ज्ञान में नहीं है, भाभी ज्ञान में नहीं है, लेकिन आप कुमार हो, आपको तकलीफ नहीं देते हैं ज्ञान में चलने के लिए, पवित्रता के लिए, तो आप बाबा को याद करके बहुत अच्छी शक्तियां भर के उस भोजन को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन कांदा और लहसुन का आपको वर्ज्य करना है। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। दीदी हमारे सीनियर भाई बहन टीचर जो है,
नजदीक रखो,
नजदीक ऐसे रख, ऐसे।
हमारे सीनियर भाई बहन टीचर जो हैं वो कई बार ये कहते हैं कि हम बीज रूप में स्थित होकर उस बीज रूप को याद करें तो हमारे भी कर्म विनाश होते हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो कहते हैं कि हम अगर हमारा योग नहीं लगता है हम तपस्या धाम में चले जाएं या फिर पीस टावर पे आ जाएं, वहां बैठ जाएं, वहां योग लगाएं, तो क्या तपस्या धाम में को याद करने से या पीस टावर पे याद करने से हमारे भी कर्म विनाश हो सकते हैं? ऐसा
कभी कभी मधुबन में भी आकर के जैसे ना लगता है कि टावर ऑफ पीस में शांति स्तंभ पे योग करे, तो फिर वहां रहते हुए मन से यहाँ करके योग करते हैं, तो बीज रूप स्थिति में तो विकर्म विनाश होता है, लेकिन ऐसे दूसरे स्थितियों से विकर्म विनाश होता है?
नहीं, सिर्फ बीज रूप और ज्वालामुखी योग से ही विकर्म विनाश होंगे।
ठीक है, संतुष्ट। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन संबंधों के ऊपर है। वैसे सर्व संबंधों की अनुभूति बहनों को अनुभव करना इजी है, भाइयों को साजन का संबंध बाबा के साथ और बाकी संबंध ठीक है, पिता का संबंध, टीचर, सदगुरु, लेकिन साजन बाबा तो कैसे वो अनुभव करें, है ना भाई? ठीक है,
अपने को सजनी बनाना है,
लेकिन देह तो भाई का है।
जैसे मैंने मिसाल दिया कि देखो जसुदा मैया ने साजन को बाप बनाया, जैसे मम्मा की माँ ने अपनी बेटी को माँ बनाया, ऐसे भाइयों को भी अभी सजनी बनना है और साजन को याद करना है। तो ये है कि हमें अपने ये फिजिकल फॉर्म को नहीं देखना है, अपने को उस समय पत्नी बना देना है,
आत्मा सजनी। लेकिन वो संबंध, एक संबंध छोड़ के और बाकी संबंध याद करें और इसको छोड़ दे तो चलेगा? बाकी सर्व संबंध से बाबा के साथ जोड़े, लेकिन ये एक संबंध छोड़ दे
तो
चलेगा?
मैं समझती हूँ ये संबंध नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा कि लौकिक पत्नी को ही सजनी समझेंगे
और कुमार
लौकिक को अलौकिक नहीं बना सके।
और कुमार
कुमार के लिए तो सहज होना चाहिए, कुमार के लिए तो और भी सहज होना चाहिए।
खुद को साजन नहीं, बाबा साजन है ना।
दीदी ओम शांति, प्रश्न बहुत गूढ़ है कि कबीर साहब का एक दोहा मैंने पढ़ा था तो कबीर साहब अपने आप को उस दोहे में सजनी बनाया था, तो मेरे भी दिल में वो बात आई कि अगर कबीर साहब अपने आप को सजनी बना सकते हैं, परमात्मा से अपना शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं और बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम भी इसका सजनी बन करके जो है उस आत्मा को सजनी के रूप में देखें और उस परमात्मा को साजन के रूप में, पति के रूप में उसे स्वीकार करें, तो शायद ये संबंध और संबंधों से कहीं सरस होगा जो है। तो वैसे तो मैंने अनुभव किया है कि बाप दादा को, बाप दादा का बेटा बनना बड़ा इजी है और संबंधों से जो है, और उसके बाद और संबंधों से भाई भी बनाना संबंध इजी है, लेकिन जब इस पर मैंने अभ्यास करना शुरू किया कि साजन वो पति है और मैं पत्नी हूं, तो इसमें बहुत थोड़ी सी मुझे अपने आप को कठिनाई महसूस हुआ जो है। लेकिन फिर हाल जब उस दीप में गया और जब वो आनंद मिला, तब ऐसा लगा कि नहीं, और संबंधों से ये संबंध सरस है जो है। तो क्या ये जो मैं फीलिंग्स किया कि वास्तव में ये सही है या गलत है?
अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा बनना तो बहुत सहज है, पर साजन बनाना और अपने को सजनी समझना सहज नहीं है, परंतु जैसे भाई ने बताया मेहनत किया तो अनुभव हो गया। तो कोई भी प्रयोग में मेहनत तो करनी पड़ती है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।